الله الله، पिछले चंद दिनों से इस हदीस के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि कयामत के दिन किसी शख्स के पैर भी नहीं हिल सकेंगे जब तक कि वो इन पांच सवालों का जवाब नहीं दे देगा। और पिछली चंद मजालिस से इनमें से पहले दो सवालों पे गुफ्तगू हुई। कि पहला सवाल ये कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी, और जिंदगी का मकसद अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े कर दिया कि हमें पैदा अल्लाह ने किया है अपनी इबादत के लिए। तो दर हकीकत पहला सवाल ये है कि कितनी जिंदगी इबादत में गुजारी और कितनी जिंदगी गफलत और नाफरमानी में गुजारी। कल की मजलिस में हमने दूसरे सवाल पे गुफ्तगू की और दूसरा सवाल था कि जवानी कैसे गुजारी। तो सवाल ये बनता है कि जी जिंदगी में जवानी भी आ जाती है तो जवानी को अलग से क्यों बयान किया गया, और जवानी को अलग से इसलिए ये जवानी का सवाल अलग से किया कि बुढ़ापे में आमतौर पे इंसान की तवज्जो इस बात की तरफ आ जाती है कि जी अब जाने का वक्त है। तो इंसान कई मर्तबा गुनाहों से तौबा भी कर लेता है, इबादत भी कर लेता है, और वैसे भी जब उसको ये लगता है कि जी अब जाने का वक्त है तो दिल दुनिया से उचाट होना शुरू हो जाता है। मगर जवानी वो वक्त होता है कि इंसान के अंदर ताकत भी ज्यादा, शहवत भी ज्यादा, हर तरफ से हर शख्स यही बता रहा होता है कि अभी तुम्हारी जिंदगी की इब्तदा है। घर का हर बड़ा, हर जानने वाला वो आपकी खैरख्वाही यही समझ रहा होता है कि किसी तरह से तुम अपनी जिंदगी बनाओ, कौन सा तुम्हारा जरिया है माश होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में तुमने पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये भी मशवरा आपको देंगे इस जवानी के शुरू में कि जी इस मुल्क को छोड़ के जरा बाहर वाले मुल्क में जाएं, अमेरिका यूरोप जाएं, ताकि तुम्हारी जिंदगी बन जाए। तो हर तरफ से फीडबैक, जहां वो पढ़ रहा होगा, जो उसके खानदान के लोग, हर बंदा उसको यही कह रहा होगा कि तुम अपनी जिंदगी बनाओ। इस प्रेशर के दौरान अगर किसी ने इस जवानी में अल्लाह की इबादत कर ली तो उसने वाकई बड़ा कमाल का काम किया है। इस सारे प्रेशर में कि जी जिंदगी बनाओ, अगर कोई जवान ऐसा निकल आया कि जो सोच में पड़ गया कि नहीं मैंने आखिरत बनानी है, तो उसने बड़ा कमाल का काम किया। कल की मजलिस में यह हदीस भी बयान की गई, नबी सलाम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन सात किस्म के लोगों को अर्श का साया मिलेगा, जब कोई और साया नहीं होगा, और उसमें से एक वो शख्स होगा जिसने जवानी में इबादत की होगी। सच्ची बात यह है कि जवानी में इबादत करना, जवानी में तौबा करना, ये पैगंबरों का काम है। तो जवानी की इबादत ये पैगंबरों से मुशाबहत है। तो कयामत के दिन के पांच सवाल, और पहला सवाल ये कि जिंदगी कैसे गुजारी, और दूसरा सवाल ये कि जवानी कैसे गुजारी, और तीसरा सवाल कि माल कहां से कमाया। इंसान के जिस्म में जो रिस्क जा रहा है वो हलाल है या हराम है, ये उसकी आखिरत के लिए बहुत अहम तरीन चीज है। हलाल रिस्क का खाना, हलाल तरीके से माल कमाना, ये इतना अहम हुक्म कि अल्लाह ने ये अपने प्यारे अंबिया को भी हुक्म फरमाया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबात, के रसूलों की जमात तुम हलाल खाओ, वअमलू सालिहा फिर नेक आमाल करो। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये हलाल खाने का नेक आमाल के साथ बड़ा ताल्लुक है। जिस्म में हलाल रिस्क जाएगा तो जिस्म नेक आमाल करेगा, और अगर जिस्म में हराम जाएगा तो जिस्म हराम काम करने की तरफ माइल होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हराम पर पलता है उसकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द फरमा देते हैं, वो जाहिरन जितना भी नेक हो, ना उसकी इबादत कबूल ना उसकी दुआएं कबूल होती है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके किसी साथी ने कुछ खाने पीने की चीज ला के दी, आपने वो नोश फरमा ली। इसके बाद वो साथी जो है वो कहता है कि हजरत लगता है, मुझे यकीन नहीं है मगर लगता है जिस शख्स ने ये दिया है उसका रिस्क जो है वो मुश्तबा है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हराम है, ये नाजायज है, उसने ये कहा कि ये मुझे जरा मुश्तबा समान लगता है। तो हजरत ने कोई नाराजगी उससे नहीं की कि यार तू क्या ये लेके आ गया मेरे लिए खाने के लिए, मैंने तो कभी इस तरह से नहीं खाया, बल्कि इससे पहले कि और कुछ करते आपने उंगली डाली अपने गले में और जो खाया था वो सारा तय कर दिया। वो खुद भी हैरान हुआ, पीछे हट कर उसने कहा ये क्या किया। फरमाया कि इससे पहले कि ये खाना मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाता ये बेहतर है कि ये मेरे जिस्म से बाहर निकल जाए। इंसान के जिस्म में हराम जाता है तो जिस्म फिर हलाल काम करने के लिए तैयार नहीं होता। अंग्रेजी का एक मकूला है, यू आर व्हाट यू ईट, तुम वही हो जो तुम खाते हो। तो अंग्रेजों ने तो ये सेहत के एतबार से कहा था कि अगर सेहतमंद चीजें खाओगे तो तुम सेहतमंद हो गए, मगर ये हलाल और हराम पे बेहतरीन फिट आता है। यू आर व्हाट यू ईट, तुम वही हो जो तुम खाते हो। तुम हलाल खाते हो तो तुम्हारा जिस्म हलाल काम करेगा, और हराम खाओगे तो जिस्म हराम काम करेगा। खानकाहों पे हलाल खाने का बहुत एहतमाम होता है, क्योंकि रूहानियत का ताल्लुक जो है वो हलाल के साथ है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इंसान को फरासत दी है उसका ताल्लुक हलाल और हराम के साथ है। माजी करीब के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत खुद भी बहुत ही एहतमाम फरमाते थे, सिर्फ हलाल नहीं खाते थे बल्कि हजरत का मामूल था कि जी रिस्क कमाया हुआ भी हलाल से होगा और इसको पकाया हुआ भी किसी नमाजी ने होगा, बे नमाजी के हाथ का भी नहीं खाते थे। आपकी खानकाह पे जो मुरीदीन आते थे आप उनसे वादा लेते थे कि ये जो तुम 40 दिन लगाने के लिए आए हो जो मैं खिलाऊंगा वही खाना है, बाहर से इधर उधर से दावतों को कबूल नहीं करना। खानकाह पे आके खानकाह का खाना खाना है, इसके अलावा और कोई खाना नहीं खाना, वरना यहां आने का फायदा नहीं। जो हासिल करने आए हो वो नहीं मिल सकेगा। तो सिर्फ ये नहीं कि हलाल, हलाल भी बेहतरीन हलाल कि तमाशी का बनाया हुआ, जिक्र की है मैं बना रहा हूं। हजरत मौलाना फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे सिलसिला अलिया नक्शबंदिया के बड़े बुजुर्ग, मिस्कीनपुर शरीफ, उनकी खानकाह पे उनकी सवाने हयात में लिखा हुआ है कि मुरीदों से कहा जाता, जब वो खाना खा रहे थे, एक मरतबा हजरत ने फरमाया, फकीरो, ये जो तुमने आज खाना खाया, इसका बीज बोते हुए भी अल्लाह का जिक्र किया गया था, इसके बीज को काटते हुए भी अल्लाह का जिक्र किया गया, इस खाने को बनाते हुए भी अल्लाह को याद किया गया था, इस खाने को लगाते हुए भी अल्लाह को याद किया गया था, काश के इस खाने को खाते हुए भी तुम अल्लाह को याद कर लेते, काश के तुम इस खाने को खाते हुए भी अल्लाह को याद कर लेते। तो खानकाहों पे हलाल खाने का एहतमाम, जिक्र अजकार का एहतमाम और हलाल और हराम का एहतमाम सिखाया जाता है। हमारे सिलसिला के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत का एहतमाम था कि बे नमाजी के हाथ का खाना नहीं खाते। कभी कभी हिंदुस्तान के बड़े बड़े तबलीगी सफर पे निकलते और कई मर्तबा खाने को एहतियात की वजह से, अगर ये बात पता चलती कि जी नमाजी नहीं है, तो बे नमाजी के हाथ के खाने के बजाय भूखा रहने को पसंद फरमा लेते। और सालों ये तरतीब रही, जिस तरह कोई शख्स नमाज में साहिब तरतीब होता है ना, कि नमाज कोई नहीं छूटती, सालों ये तरतीब नहीं छूटी कि बे नमाजी के हाथ का खाना कभी नहीं खाया। तो जिंदगी में वक्त एक ऐसा आया कि अल्लाह ने ऐसी फरासत दी थी कि देख के बता लेते थे कि खाना हलाल है, खाना नमाजी ने बनाया है या बे नमाजी के हाथ का बना हुआ है। कल रात हमारे प्रोग्राम में जो बुजुर्ग आए थे, मौलाना अब्दुल शुकूर साहब, दामत बरकात, ये हमारे सिलसिला के एक बुजुर्ग हैं, चकवाल वाले, हजरत हाफिज गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह उनके शेख थे। तो ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत हाफिज गुलाम हबीब साहब की घर पे तशरीफ लाए, सफर कर रहे थे तो इत्तला दिए बगैर पहुंच गए। तो उस इलाके में सफर हो रहा था, स्टॉप करना था कहीं, रुकना था, आगे सफर करना था, तो अचानक हजरत के घर पे आ गए और हाफिज हजरत गुलाम हबीब साहब जो है वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे, उनके साहबजादे मौजूद थे। अब वालिद के शेख आए तो एक हंगामा हो गया कि जी हजरत तशरीफ ले आए, अचानक तशरीफ ले आए, तो बड़ी ही मोहब्बत से, तो बड़ी इज्जत से, अपने वालिद को भी ये करते हुए देखा था तो उनको बड़े इज्जत से जाके और कमरे में लिटाया कि हजरत आप थके हुए आए हैं। हजरत ने भी बताया कि भाई आगे लंबा सफर है तो यहाँ स्टॉप कर लिया कि थोड़ा आराम इधर मिल जाएगा, फौरन हजरत को लिटाया, कुछ हजरत के साथी भी साथ, जल्दी से वालदा को बताया कि जी हजरत आए, खाना तैयार करें, खाना भी लगाना है, हजरत को भी बताया कि बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो रहा है, आराम फरमा ले। उसने भी कहा बस कुछ आराम करूंगा, कुछ खाऊंगा, फिर आगे मैंने सफर में जाना। उन्होंने बताया कि जी वाले साहब भी सफर पे हैं। थोड़ी देर में खाना तैयार हुआ और खाना लगा के और सारे बैठ गए। हजरत को बुलाया कि हजरत तशरीफ ले आए, खाना तैयार। हजरत तशरीफ लाए और बैठे और थोड़ी देर तक खामोश रहे। अब जाहिर है हजरत जब तक शुरू नहीं फरमाएंगे तो और कोई भी शुरू नहीं कर रहा है खाना। बहुत देर तक देखते रहे और खाना शुरू नहीं फरमाया। और फिर वो जो साहबजादा साहब थे जिनका घर ये था, किताबों में लिखा है, उन्होंने फरमाया कि हजरत ने फरमाया कि ये तुम्हारे घर में सुअर कहाँ से आ गया। वो जो साहबजादा साहब थे उनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनको पता था कि जी हजरत को ये फरासत नसीब है, ये देख के बताते थे कि जी हलाल है या हराम है, ये नमाजी ने बनाया या बेनमाजी ने बनाया। तो उनको तो यकीन था कि हमारे घर का खाना है और वालदा साहिबा सालों से नमाजी। तो उठ के गए और वालदा से कहा कि हजरत फरमा रहे कि तुम्हारे घर में सुअर कहाँ से आ गया। ये कहना था कि वालदा कहती है ओहो सही फरमा रहे कि ये बराबर वाले घर की औरत थी, मुझे हमेशा कहती थी कि हजरत तुम्हारे घर पे आते मुझे बड़ा शौक है कि हजरत जो है वो हमारे घर से खाना खाए। और इसके घर में जो खाना आता है, इसके घर का जो कचौल जो कमाता है वो जायज आमदनी नहीं है, तो इसलिए हजरत ने ये पाप लिया। अल्लाह कयामत के दिन का बड़ा सवाल होगा कि रिस्क कहाँ से कमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 सवाल का जवाब दिए बगैर किसी के पैर भी नहीं हिल सकेंगे। पहला सवाल ये कि जिंदगी कैसे गुजारी, दूसरा सवाल ये कि जवानी कैसे गुजारी, और तीसरा सवाल कि रिस्क कहाँ से कमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के सवाल जवाब से हमें महफूज भी फरमाए और कयामत के सवाल जवाब को पूरी तरह से जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة